एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो दिखती तो है पर अक्सर समझी नहीं जाती। मेरा मतलब है कॉमिक्स की दुनिया।
हाँ, और इस सफर में हमारे गाइड है स्कॉट मैकलाउड और उनकी कमाल की किताब अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स The Invisible Art।
बिल्कुल, और हमने इस बातचीत के लिए इसके गुजराती सारांशों को आधार बनाया है।
और देखिए, ये चर्चा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कॉमिक्स पढ़ते हैं। आजकल हम सब मतलब चारों तरफ से तस्वीरों से घिरे हैं, है ना?
हाँ, सोशल मीडिया, विज्ञापन, फिल्में, हर जगह विजुअल्स ही विजुअल्स हैं।
तो ये किताब एक तरह से हमें सिखाती है कि ये जो विजुअल कहानियां हैं, ये बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं। तो कह सकते हैं कि ये आज की दुनिया को समझने की एक चाबी जैसी है।
बिल्कुल सही काम। और इस चाबी को बनाने वाले भी बड़े दिलचस्प हैं, स्कॉट मैकलाउड।
हाँ, उनके बारे में बताइए थोड़ा।
देखिए, वो सिर्फ कोई किताबी कीड़े या विचारक नहीं है, वो खुद एक कार्टूनिस्ट रहे हैं, कॉमिक्स बनाते थे। उनकी एक सीरीज थी जॉट,
अच्छा,
तो मतलब प्रैक्टिकल अनुभव ही
हाँ,
है।
और यही बात उन्हें खास बनाती है। उन्होंने कॉमिक्स बनाते हुए जो सीखा ना, जो अनुभव किया, उसी को उन्होंने थ्योरी में बदल दिया। मतलब वो अंदर की बातें जानते हैं, कैसे लाइनें खींचती हैं, कैसे पैनल लगते हैं, वो सब।
सही, तो उन्होंने कॉमिक्स की कला को एक गंभीरता दी, है ना?
उसे समझने समझाने का एक पूरा ढांचा तैयार किया।
बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात, मतलब कमाली है,
क्या
उन्होंने कॉमिक्स को समझाने वाली ये किताब भी कॉमिक्स के रूप में ही बनाई।
क्या बात है, मतलब कॉमिक्स की थ्योरी कॉमिक्स में ही।
हाँ, सोचिए जरा, जिस कला की बात कर रहे हैं उसी कला का इस्तेमाल करके। ये अपने आप में एक सबूत है कॉमिक्स की ताकत का।
सही।
वो दिखाते हैं कि भाई, कॉमिक्स सिर्फ बच्चों की चीज या कोई हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं, ये विचारों को बताने का एक बहुत गहरा, बहुत असरदार जरिया है।
तो फिर ये किताब करती क्या है असल में, मतलब इसका सार क्या है?
देखिए, ये कॉमिक्स की दुनिया की एक एक गहरी छानबीन है, और ये छानबीन भी तस्वीरों और शब्दों के जरिए ही की गई है।
अच्छा,
मैकलाउड हमें कॉमिक्स के पर्दे के पीछे ले जाते हैं, वो अदृश्य धागे दिखाते हैं जिनसे ये पूरी कला बुनी जाती है।
तो इसका मकसद क्या है? क्या ये कॉमिक्स बनाना सिखाती है?
नहीं नहीं सिखाना नहीं, इसका मकसद है कॉमिक्स को लेकर हमारी सोच का दायरा बढ़ाना। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, कॉमिक्स मतलब सुपर हीरो।
हाँ, या फिर वो अखबार वाले कार्टून, चुटकुले टाइप।
बिल्कुल, मैकलाउड कहते हैं नहीं, ये तो बस चंद उदाहरण है। कॉमिक्स तो कहानी कहने का एक तरीका है, एक माध्यम है, जैसे फिल्म होती है या नॉवल।
अच्छा, एक माध्यम।
हाँ, और इस माध्यम की अपनी एक भाषा है, अपनी ग्रामर है। ये किताब हमें वो भाषा पढ़ना सिखाती है।
दिलचस्प। तो ये कैसे करती है, मतलब क्या दिखाती है किताब?
ये हमें दिखाती है कैसे वो जो दो तस्वीरों के बीच खाली जगह होती है ना, वहां जादू होता है।
खाली जगह में जादू।
हाँ, और कैसे साधारण सी दिखने वाली लाइनें वो हमें भावनाएं जगा देती हैं, और कैसे शब्द और चित्र मिलकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो अकेले नहीं कह सकते।
तो ये किताब कॉमिक्स को सिर्फ देखने से आगे ले जाती है, उसे समझने में मदद करती है।
बिल्कुल। तो चलिए कुछ बड़े और दिलचस्प विचारों पर बात करते हैं जो मैकलाउड सामने रखते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि आखिर कॉमिक्स हैं क्या?
हाँ, ये तो बुनियादी सवाल है।
और मैकलाउड कहते हैं कि जो पुरानी परिभाषाएं हैं ना कॉमिक्स की, वो बहुत छोटी हैं।
तंग है।
हाँ, बहुत, तो वो एक नई, ज्यादा खुली, ज्यादा व्यापक परिभाषा देते हैं। क्या थी वो? जानबूझकर एक क्रम में अगल बगल रखी गई तस्वीरें और दूसरी छवियां, कुछ ऐसा।
अच्छा, जानबूझकर क्रम में रखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सुपरहीरो या कार्टून ही कॉमिक्स नहीं है।
बिल्कुल। सोचिए जरा, हजारों साल पहले मिस्र की दीवारों पर बनी वो चित्र कथाएं,
हाँ, देखी हैं।
या वो बाइक्स टैपेस्ट्री है जिसमें एक पूरी लड़ाई कहानी की तरह दिखाई गई है।
हाँ,
मैकलाउड के हिसाब से ये भी कॉमिक्स के ही पुराने रूप हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत पीछे ले गए।
हाँ, वो कहते हैं कि माध्यम को, यानी कहानी कहने का तरीका, कि तस्वीरें क्रम में हैं, उसको विषय से अलग देखना जरूरी है।
विषय मतलब?
मतलब कि क्या कहानी कही जा रही है। कॉमिक्स किसी भी तरह की कहानी कह सकते हैं, गंभीर, मजेदार, जानकारी देने वाली, कुछ भी।
समझ गई। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आते हैं कॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले आइकन्स पर, प्रतीक। ये भी बड़ा मजेदार हिस्सा लगता है।
हाँ, बहुत मजेदार है। मैकलाउड एक एक स्केल या दायरे की बात करते हैं। सोचिए, एक तरफ है बिल्कुल असली दिखने वाली तस्वीर, जैसे फोटोग्राफ।
सरलता।
हाँ, और कॉमिक्स इस पूरे दायरे में कहीं भी हो सकते हैं, ज्यादा असली जैसे भी और बहुत सरल कार्टून जैसे भी।
और यहीं पर कार्टून की ताकत सामने आती है। मैकलाउड एक कमाल की बात कहते हैं जिसे वो सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी कहते हैं।
यूनिवर्सैलिटी मतलब?
उनका कहना है कि जब हम कोई बहुत असली दिखने वाला चेहरा देखते हैं ना, फोटोग्राफ जैसा, तो हमें लगता है कि ये कोई और है, कोई दूसरा इंसान।
हाँ ठीक है।
लेकिन जब हम एक बहुत ही सरल कार्टून चेहरा देखते हैं, जैसे वही स्माइली, तो वो इतना अमूर्त होता है, इतना साधारण कि हम उसमें खुद को देख सकते हैं।
क्या बात है, मतलब उसकी सादगी ही उसकी ताकत बन जाती है।
बिल्कुल, वो कार्टून किसी एक खास व्यक्ति का नहीं रहता, वो हम में से कोई भी बन जाता है। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो साधारण दिखने वाले कार्टून किरदार होते हैं उनसे हम ज्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं, उनसे ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं।
हाँ ये बात तो है। जैसे वो अमूल गर्ल का कार्टून कितना सरल है पर हर कोई उससे कनेक्ट करता है।
सही उदाहरण। या दुनिया भर में इमोजी कितने पॉपुलर है, वो सरल है पर भावनाओं को बताने में कितने कामयाब हैं।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि सादगी में इतनी गहराई हो सकती है। अच्छा अब उस चीज पर आते हैं जिसे मैकलाउड कॉमिक्स का असली जादू कहते हैं, वो जो पैनल्स के बीच होता है।
हाँ गटर, मतलब दो तस्वीरों या पैनल्स के बीच की वो खाली सफेद जगह। मैकलाउड कहते हैं कि ज्यादातर कहानी इसी खाली जगह में घटती है। कमाल है ना।
खाली जगह में कहानी, ये कैसे मुमकिन है?
ऐसे कि कलाकार हमें दो अलग अलग पल दिखाता है। मान लीजिए एक पैनल में कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है,
ठीक है,
और अगले ही पैनल में वही आदमी घर के अंदर बैठा चाय पी रहा है।
अच्छा
तो बीच में क्या हुआ? दरवाजा खुला होगा, उसे अंदर बुलाया गया होगा, चाय दी गई होगी, ये सब हमें दिखाया नहीं गया।
हाँ दिखाया तो नहीं गया,
पर हमारा दिमाग खुद ब खुद ये खाली जगह भर लेता है। इसी दिमागी छलांग को मैकलाउड क्लोजर कहते हैं।
अरे हाँ ये तो हम हर कॉमिक्स पढ़ते हुए करते हैं पर कभी इस पर ऐसे सोचा नहीं
है ना।
मतलब कॉमिक्स पढ़ना सिर्फ देखना नहीं है बल्कि कहानी को पूरा करने में हमारी हिस्सेदारी भी है।
बिल्कुल, कॉमिक्स एक तरह की पार्टनरशिप है कलाकार और पढ़ने वाले के बीच। कलाकार इशारे देता है, फ्रेम देता है,
और हम उन इशारों को जोड़कर कहानी बनाते हैं। वाह।
हाँ और कलाकार ये भी तय करता है कि पैनल्स के बीच कितनी बड़ी छलांग लगवानी है, क्या अगले ही पल का एक्शन दिखाना है जिसे वो एक्शन टू एक्शन कहते हैं, या फिर सीन पूरी तरह बदल देना है, सीन टू सीन ट्रांजिशन। इससे कहानी की रफ्तार और उसका असर तय होता है।
अच्छा
मैकलाउड मजाक में कहते भी हैं कि पैनलों के बीच किसी को मारना उसे हजार मौतें देने जैसा है।
क्यों?
क्योंकि पढ़ने वाला उस खाली जगह में न जाने क्या क्या सोच सकता है, उसकी कल्पना काम करती है वहाँ।
वाह ये क्लोजर वाली बात तो सच में कॉमिक्स को समझने का नजरिया ही बदल देती है। गजब। अच्छा और शब्द और चित्रों का क्या रिश्ता है कॉमिक्स में, क्या वो बस साथ साथ चलते हैं?
नहीं नहीं, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। मैकलाउड कहते हैं कि कॉमिक्स सिर्फ तस्वीरों वाली कहानी या कहानी वाली तस्वीरें नहीं है।
तो फिर क्या है?
असली मजा तब है, असली ताकत तब है जब शब्द और चित्र एक दूसरे पर निर्भर हो, इंटरडिपेंडेंट हो, जब वो मिलकर कुछ ऐसा मतलब बनाए जो अकेले ना बना सकते हो।
इंटरडिपेंडेंट, कोई उदाहरण दे सकती है इसका?
हाँ मान लीजिए एक पैनल में एक बहुत उदास सा दिखने वाला किरदार है, चेहरा लटका हुआ,
ठीक है,
और नीचे कैप्शन लिखा है आज मैं बहुत खुश हूँ।
तो तस्वीर कुछ और कह रही है, शब्द कुछ और।
बिल्कुल, अब दोनों मिलकर एक अजीब सा, शायद व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक मतलब बना रहे हैं ना, जो ना तो सिर्फ तस्वीर देखने से मिलता न ही सिर्फ कैप्शन पढ़ने से।
हाँ हाँ समझ गया, ये दोनों मिलकर एक तीसरा मतलब बना रहे हैं।
सही, यही कॉमिक्स की असली कीमिया है। ये हमारी देखने और पढ़ने दोनों की समझ को एक साथ इस्तेमाल करता है।
हाँ ये तो भाषा और विजुअल का एक अनूठा संगम है। वाकई मैकलाउड ने तो सचमुच कॉमिक्स की जो अंदरूनी बनावट है उसे परत दर परत खोल कर रख दिया है।
हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बताया है कि कॉमिक्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी कला है जिसके कई चरण होते हैं, आइडिया से लेकर फाइनल आर्टवर्क तक।
अच्छा
हाँ, उन्होंने रेखाओं यानी लाइंस के बारे में भी बात की है कि कैसे अलग अलग तरह की लाइनें, जैसे कांपती हुई लाइन डर दिखा सकती है, चिकनी लाइन शांति।
ओह लाइनें भी भावनाएं बताती हैं।
हाँ और समय को कैसे दिखाया जाता है, पैनल का साइज बदल के या पैनल्स के बीच की खाली जगह से। समय की गति का एहसास कैसे कराया जाता है, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर कहानी को असरदार बनाती हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें, निचोड़ निकालें, तो क्या होंगी वो?
मेरे लिए तो सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि कॉमिक्स एक पूरी भाषा है, कहानी कहने का एक गंभीर और वैध तरीका।
हाँ, सिर्फ मनोरंजन नहीं,
बिल्कुल, ये कला का एक रूप है जिसका अपना व्याकरण है, अपनी शब्दावली है। जैसे भारत में अमर चित्रकथा को ही देखिए।
हाँ, बचपन में पढ़ी है सबने।
कैसे वो तस्वीरों और कम शब्दों में हमारी पौराणिक कथाओं और इतिहास को जिंदा कर देती हैं, वो भी तो कॉमिक्स ही हैं एक तरह से।
हाँ, सही बात है। अच्छा, और दूसरी अहम बात?
दूसरी अहम बात है वो क्लोजर और पढ़ने वाले की भूमिका। कॉमिक्स पढ़ना एक एक्टिव काम है, हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं,
हम कहानी बनाने में भागीदार हैं।
हाँ, ये कमाल की बात है, हम खाली जगहों को अपनी समझ और कल्पना से भरते हैं। भारत में राजनीतिक कार्टून इसके बेहतरीन उदाहरण है।
हाँ, वो अक्सर बहुत कम शब्दों में, इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं और बाकी समझने का काम हम पर छोड़ देते हैं।
तीसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है सादगी की ताकत, वो सार्वभौमिकता वाली बात।
हाँ, कि सरल कार्टून जैसे किरदारों से हम ज्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं,
क्योंकि उनमें हम किसी खास को नहीं बल्कि खुद को या किसी को भी देख पाते हैं। जैसे वो अमूल गर्ल का कार्टून कितना सरल है, पर दर्शकों से हर भारतीय उससे जुड़ाव महसूस करता
है। विज्ञापनों और ब्रांडिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है, सरल लोगो, सरल मैस्कॉट।
सही। और चौथी बात?
चौथी बात वो अदृश्य कलाकारी, पैनल्स के बीच का मतलब, लकीरों में छिपी भावनाएं, शब्द और चित्र का तालमेल, ये सब पर्दे के पीछे काम करते हैं। मैकलाउड हमें दिखाते हैं कि ये सब कितने सोचे समझे ढंग से किया जाता है।
हाँ, आजकल हम इन्फोग्राफिक्स देखते हैं ना।
हाँ, बहुत चलते हैं,
जो मुश्किल जानकारी को आसान विजुअल्स और क्रम में बदल देते हैं, ये भी तो इसी अदृश्य कलाकारी का एक रूप है।
बिल्कुल। अच्छा, इस किताब में कुछ ऐसे विचारे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, है ना?
हाँ, कई हैं, जैसे वो परिभाषा ही, जानबूझकर क्रम में रखी गई सचित्र और अन्य छवियां, ये क्यों अहम है?
क्योंकि ये कॉमिक्स को किसी एक खांचे में बांधने से आजाद करती है, उसे व्यापक बनाती है।
और वो क्लोजर वाली बात, असली जादू पैनलों के बीच की खाली जगह में होता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि पढ़ने वाला कितना जरूरी है इस कला के लिए, हम सिर्फ कहानी लेते नहीं, उसे बनाते भी हैं, ये इंटरैक्टिव है।
और तीसरा, वो कार्टून और पहचान वाला विचार, हम यथार्थवादी चेहरे में दूसरे को देखते हैं पर कार्टून में खुद को।
हाँ, ये समझाता है कि क्यों कभी कभी सबसे सरल चीजें सबसे गहरा असर छोड़ जाती हैं, ये हमारी कनेक्ट करने की, जुड़ने की इच्छा को दिखाता है।
ये तीनों विचार मिलकर कॉमिक्स की गहराई और उसकी जो मनोवैज्ञानिक पकड़ है उसे उजागर करते हैं।
और कमाल की बात यह है कि ये सारे सिद्धांत सिर्फ कॉमिक्स पर ही लागू नहीं होते।
हाँ, बिल्कुल,
इनका दायरा तो बहुत बड़ा है।
हाँ, बिल्कुल, सोचिए जरा, जो लोग कहानियां बनाते हैं, लेखक, फिल्म मेकर, एडवर्टाइजिंग वाले,
हाँ, उनके लिए तो ये सोने की खान जैसे हैं।
स्टोरी बोर्डिंग कैसे करें, अपनी बात का असर कैसे बढ़ाएं, दर्शकों का ध्यान कैसे खींचे रखें, इन सब में मदद मिल सकती है।
बिल्कुल। और मार्केटिंग या डिजाइन में सरल लोगों क्यों काम करते हैं, वही यूनिवर्सैलिटी, वेबसाइट या ऐप का इंटरफेस कैसे आसान बनाएं, सहज प्रतीक।
हाँ, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन।
और प्रेजेंटेशन या इन्फोग्राफिक्स को कैसे ज्यादा दिलचस्प बनाएं, इन सब में मैकलाउड के विचार लागू होते हैं, ये विजुअल कम्युनिकेशन की एक तरह की गाइड बुक ही है।
और शिक्षकों के लिए भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है।
कैसे?
कॉमिक्स के जरिए बच्चों को पढ़ाना सिखाना, खासकर उन्हें जो किताबों से कतराते हैं, क्लोजर के जरिए उनमें अनुमान लगाने और सोचने की क्षमता बढ़ाना।
अच्छा।
और मुश्किल विषयों को आसान कॉमिक स्ट्रिप में समझाना, सोचिए किसी सरकारी योजना को ही कॉमिक्स में समझाना कितना असरदार हो सकता है।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और हम सबके लिए जो रोजाना इतना सारा मीडिया देखते हैं, फिल्में, विज्ञापन, वेब सीरीज,
हाँ मीम्स भी,
ये किताब हमें एक नया चश्मा देती है, हम इन सबको ज्यादा गहराई से देख सकते हैं,
हम समझ सकते हैं कि बनाने वाले ने क्या सोचकर तस्वीरें चुनी, उन्हें कैसे क्रम में रखा, कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेला।
बिल्कुल, ये हमें ज्यादा जागरूक और समझदार मीडिया कंज्यूमर बनाती है।
सच कहूं तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि कॉमिक्स पढ़ना कितना एक्टिव प्रोसेस है। ये क्लोजर का आइडिया ये मेरे दिमाग में घूम रहा है, हम सिर्फ देखते नहीं, कहानी को पूरा करते हैं, अनजाने में ही सही, ये सोचना ही अद्भुत है।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि कैसे मैकलाउड ने सादगी और कार्टूनिंग को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बताया। वो यूनिवर्सैलिटी वाली बात।
ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है ये किताब। सिर्फ कॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये तो हर तरह की विजुअल कहानी को समझने की एक डिकोडर रिंग है।
सही कहा। तो कुल मिलाकर अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स हमें सिखाती है कि कॉमिक्स एक गहरी, ताकतवर और बहुमुखी कला है जिसका सम्मान होना चाहिए। ये बनाने वाले और देखने वाले के दिमाग के बीच एक अनूठी साझेदारी है।
हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि तस्वीरों की अपनी एक जुबान होती है, और अगर हम उसे पढ़ना सीख लें तो हमें कहानियों की एक पूरी नई दुनिया मिल सकती है।
शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ देखते हैं उसमें से कितना सचमुच हमारी आंखों के सामने होता है और कितना हमारे दिमाग के अंदर उन्हीं खाली जगहों में रचा जाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।